स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आज सुनिए भीष्म साहनी की लिखी कहानी सागमीट। इस कहानी को मैंने थोड़ा सा समय के लिए संशोधित किया है। साग मीट बनाना क्या मुश्किल काम है, आज शाम खाना यहीं खा कर जाओ, मैं तुम्हारे सामने बनवाऊंगी, सीख भी लेना और खा भी लेना, रुकोगी ना? इन्हें साग मीट बहुत पसंद है। जब कभी दोस्तों का खाना करते हैं तो साग मीट जरूर बनवाते हैं। हाय, साग मीट तो जग्गा बनाता था, वो होता तो मैं उससे साग मीट बनवाकर तुम्हें खिलाती। उसके हाथ में बड़ा रस था, वो उसमें घी डालता, लहसुन डालता, जाने क्या क्या डालता, बड़े शौक से बनाता था। मेरे तो 3-3 डिब्बे घी के महीने में निकल जाते हैं। नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है, पर कौन जाने मुए हमें डालडा खिलाते हों और खुद अच्छा घी हड़प जाते हों। आज के ज़माने में किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। मैं ताले नहीं लगा सकती, मुझसे ताले नहीं लगते। मैं कहती हूँ खाते हैं तो खाएं, कितना खा लेंगे, मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती, अब ताले कौन लगाए। ये मथुरा 7 रोटियां सवेरे और 7 रोटियां गिनकर शाम को खाता है। बीच में इसे 2 बार चाय भी चाहिए और घर में जो मिठाई हो वो भी इसे दो। पर मैं कहती हूँ टिका हुआ तो है, आजकल किसी नौकर का भरोसा थोड़ी है, किसी वक्त भी उठकर कह देते हैं मैं जा रहा हूँ। ये भी मुझे यही कहते हैं, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो नहीं भोंकेगा। 70 रुपए पर इसे रखा था, अब 100 लेता है, फिर भी इसके तेवर चढ़े रहते हैं। पर जग्गा बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नमक हलाल। वो नौकर थोड़े था, वो तो घर का आदमी था, वो इन्हें बहुत मानता था। एक बार ये कुछ कह दे तो मजाल है वो पूरा ना करे, बड़ा वफादार था। ये भी तो नौकर को नौकर थोड़ी समझते हैं, घर का आदमी समझते हैं। जब कभी 150 की उसे जरूरत होती झट से निकाल कर दे देते, कहीं कोई लिखत नहीं कोई हिसाब नहीं। जग्गा बीवी ब्याह कर लाया तो 2 जोड़े और 1 गर्म कोट सिलवा कर दिया। मैं इनसे कहूं जी क्यों पैसे लुटाते हो, नौकर किसी के अपने नहीं होते, इसी को 5 रुपए कहीं ज्यादा मिल गए तो ये पीठ फेर लेगा। ये कहते तू अपना काम देख, पानी निकालने से कुएं खाली नहीं होते, ये हमें साग मीट खिलाता रहे, मुझसे जो मांगेगा दूंगा, इस जैसा बावर्ची तो शहर भर में नहीं होगा। मुझे वो दिन याद है जब जग्गे को लेकर आए थे, बाहर से ही आवाज लगाई, ले सुमित्रा तेरे लिए नौकर लाया हूं। तब भी ये मुझसे कहें इसे चाय के साथ खाने के लिए जरूर कुछ दे दिया कर, एक मठरी ज्यादा दे देने से तेरा नुकसान नहीं होगा, इसे घर से मोह पड़ गया तो वर्षों तक तेरे साथ बना रहेगा, तेरा सारा काम कर दिया करेगा। और जग्गा भी ऐसा जैसे जंगल से हिरण पकड़ लाए हों, बड़ी बड़ी उसकी आंखें, हिरण की तरह हैरान सा दिखता रहता। वही बात हुई, जग्गे को मोह हो गया। पर ये छोटी उम्र में होता है, बड़े बड़े मुश्टंडे नौकर जो सड़कों पर घूमते हैं इन्हें क्या मोह होगा, बच्चे कोमल होते हैं, जैसा सिखाओ सीख जाते हैं, जानवर सीख जाते हैं तो ये क्यों नहीं सीखेंगे, इन्हें बस में करने के बड़े ढंग आते हैं। तुम्हें जैकी याद है ना? हाय, तुम्हें जैकी भूल गया, जैकी कुत्ता जिसे ये एक दोस्त के घर से उठा लाए थे, सभी को भौंकता फिरता था, पर इन्होंने उसे ऐसा हाथ में किया इन्हीं के कदमों में चक्कर काटता फिरता था, उसे भी ऐसा ही मोह पड़ गया था इनके साथ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर से इनके लौटने का वक्त होता तो जैकी के कान खड़े हो जाते, बाहर सारा वक्त दसियों मोटरें दौड़ती रहती, पर जिस वक्त इनकी मोटर आती तो इसे झट से पता चल जाता और भाग कर बाहर पहुंच जाता, सीधा गेट पर जा पहुंचता, वहीं पर एक दिन अपनी ही गाड़ी के नीचे कुचला गया। ये मोह बहुत बुरी चीज है। ये कांटे कहाँ से बनवाए, बड़े खूबसूरत हैं, हीरे कितने के आए? सच्चे है ना? आजकल हर चीज को आग लगी हुई है। मैंने एक नाक की लौंग बनवाई, इतना छोटा सा हीरा इसमें लगा है, पर पूरे 700 खुल गए। अब तो मुझे पहनते भी डर लगता है। जब जग्गा था तो मेरी जेवरों की पिटारी भी बाहर पड़ी रहती थी, कभी 2 पैसे भी इधर उधर नहीं हुए। ऐसी भुलक्कड़ हूं, कभी चेन गोसलखाने में रह जाती, कभी तिपाई पर रह जाती, जग्गा उठाकर दे देता। पर अब तो ऐसे नौकर आए हैं, हरे राम, मैंने सारे जेवर उठाकर बैंक में रख दिए हैं। मथुरा से पहले एक नौकर था मनसा नाम का, ऊपर से बड़ा शरीफ, लगता उसके मुंह में जबान ही नहीं है। पर एक दिन मैं पिछवाड़े की तरफ से घर आ रही थी तो क्या देखती हूँ, मनसा छत पर खड़ा है और गली में खड़े आदमी को ऊपर से एक एक करके कपड़े फेंक रहा है। मुझे देखते ही दोनों चंपत हो गए। मनसा गली में कूद गया और वहीं से भाग गया। आजकल नौकर रखने का जमाना नहीं है। मैं तो घर के बाहर भी जाऊं तो डर लगा रहता है कि पीछे नौकर कहीं घर की सफाई ही ना कर जाए। जग्गा था तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होती थी, वो हाथ का बड़ा साफ था। तू कुछ खा भी ना, तू तो कुछ भी नहीं खाती। गर्म चाय मंगवाऊं? इसे छोड़ दे, ये ठंडी पड़ गई होगी। ये केक का टुकड़ा ले, बाजारी है पर बहुत अच्छा है। केक तो बनाती है कमला की सास, एक से एक बढ़िया। कभी उसमें चॉकलेट डालती है, कभी कुछ कभी कुछ। वेंगर से लेने जाओ तो केक मुए 18 रुपए में बेचते हैं। कमला की सास 5 रुपए में बना लेती है, बीच में अंडे भी, दूध चीनी भी, किशमिश और बादाम भी, जाने क्या क्या। मुझसे तो अपनी जान नहीं संभाली जाती, मैं क्या करूंगी। केक जग्गा भी बहुत अच्छा बनाता था, पर उसकी किस्मत खोटी थी, नहीं तो आज तुम्हें उसी के हाथ का केक खिलाती। हर तीसरे चौथे दिन केक बनाता था पर खुद कभी नहीं खाता था। मैं उससे कहूं तू भी एक टुकड़ा खा ले, पर नहीं, वो कहता बीबी जी यहां केक खाऊंगा तो बाहर मुझे केक कौन देगा। किसे मालूम था कि यूं चला जाएगा। मैं तो अब भी कहती हूं बक देता तो बच जाता, पर अपनी अपनी किस्मत है, कोई क्या करे। इनके सामने उसने मुंह ही नहीं खोला, इन्हें बहुत मानता था, बोला इसलिए नहीं कि इनके दिल को ठेस पहुंचेगी। और क्या बात हो सकती थी, अब अंदर की बात इन्हें क्या मालूम, वो बताए तो पता चले। वो तो मैं जानती थी उसके मन में क्या था, उसने हवा तक नहीं लगने दी। धीरे बोल, दोपहर के वक्त किसी को क्या मालूम, सोया आदमी तो मरे बराबर होता है। हमारे घर में तो उस वक्त चिड़ी तक नहीं फड़कती, किसी को क्या खबर घर के पिछवाड़े में क्या हो रहा है। मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती, भगवान झूठ ना बुलवाए। एक दिन दोपहर को मैं उठी, गोसलखाने की तरफ जा रही थी जब मुझे खटका सा हुआ। मुझे लगा जैसे कोई जग्गे की कोठरी की तरफ जा रहा है। मेरे अंदर से फुरनी फुरी, इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है। जग्गे को तो इस वक्त ही अपने दफ्तर में बुला लेते हैं, जग्गा तो इस वक्त दफ्तर में काम करता है, इनके लिए चाय पानी बनाता है, चपरासी गिरी करता है। ये कहते थे कि घर के लिए दूसरा नौकर मिल जाए तो जग्गे को मैं दफ्तर में रख लूं। फिर इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा, हाय ये तो बिक्की है, मेरा देवर। काला सूट पहने दबे पांव चला जा रहा था और सीधा जग्गे की कोठरी में क्या करने गया है। फिर मैंने सोचा किसी काम से आया होगा, पर जग्गे की कोठरी में उसका क्या काम, और ये इतना दबे पांव क्यों जा रहा है। मन में आया इसी से जाकर पूछूं, पर मुझसे मेरी जान नहीं संभाली जाती। मैं लौट कर फिर पलंग पर पड़ी रही, पर ध्यान मेरा बार बार उसी ओर जाए। भले मानस घरों में ऐसे काम नहीं करते, जो ऐसे काम करने हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेता, किसी का घर क्यों खराब करता है। तुमने जग्गे की घरवाली देखी थी ना, बड़ी भोली सी लड़की थी, गोरी इतनी, हाथ लगाए मैली होती थी। ये कलमुहा किसी बहाने दफ्तर से भाग आता था और उसी कोठरी में जा घुसता था। उस दिन मेरी नजर पड़ गई, असील सी गांव की लड़की सहमी सहमी सी इस चंट के आगे क्या बोलती। धीरे बोल, इनके घर में पतचलनी बहुत है, यही एक शरीफ हैं। इनके चाचा ने भी दो दो रखेल रखी हुई थी। इनकी चाची बुढ़िया दोपहर को अपने एक नौकर से पांव दबवाती थी, मैंने खुद देखा है। खाना खाने के बाद अपने कमरे में घुस जाती और पीछे पीछे मुष्टंडा शंकर पहुंच जाता। अब ऐसी बातें छिपी तो रह नहीं सकती ना। एक दिन जग्गे ने ही देख लिया। इन्होंने थर्मस मंगवाने के लिए जग्गे को घर भेजा। मैंने उसे थर्मस दी और वो अपनी कोठरी की तरफ चला गया। अचानक मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, पिक्की वही काला सूट पहने जग्गे की कोठरी से बाहर निकल रहा था। बिक्की बाबू, जग्गे ने कहा। फिर उसका मुंह जैसे बंद हो गया, फटी पटी आंखों से उसे देखता रह गया। उधर बिक्की बिना उसकी ओर देखे चुपचाप वहां से निकल गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा, अब इसकी घरवाली की खैर नहीं, ये उसे धुन देगा, क्या मालूम जान से ही मार डाले, इन लोगों का कुछ पता थोड़ी है। पर कोठरी के अंदर से ना हूं ना हां। मैं नहीं जानती जग्गा कितनी देर तक अंदर रहा, उसने अपनी बीवी से कुछ कहा या नहीं कहा। मैं तो जाकर लेट गई, पर मैंने मन ही मन कहा कि आज रात मैं इनसे बात करूंगी। या तो जग्गे को चलता करें या उससे कहें कि अपनी घरवाली को गांव छोड़ आए, यहां उसका रहना ठीक नहीं। लेटे लेटे भी मेरे कान कोठरी की ओर लगे रहे। अभी वहां से रोने चिल्लाने पीटने रोने की आवाज आएगी, पर वहां बिल्कुल चुप। मैंने मन ही मन कहा, ऐसा शरीफ आदमी भी किस काम का जो अपनी घरवाली को काबू में नहीं रख सकता। दो लप्पड़ उसके मुंह पर लगाता, वो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाती। अरे 10 तरीके हैं औरत को सीधे रास्ते पर लाने के, पर यहां ना हूं ना हां। उस दिन क्लब में गई तो हरचरण की बीवी औरतों पर रुआब गांठ रही थी, कह रही थी मैं 7 गोलियां रोज खाती हूं। मैंने सुना पर चुप रही। मन में कहा, यह भी कोई ऐंठने की बात है, भगवान अहंकार ना बुलवाए, 15-15 गोलियां भी रोज खाई हैं, पर बाहर जाकर ढिंढोरा नहीं पीटती कि दवाई की 15 गोलियां रोज खाते हैं। डॉक्टर घर का पक्का रखा हुआ है, 300 रुपया बंधा बंधाया उसे हर महीने देते हैं, घर में कोई बीमार हो या नहीं हो। अभी भी खाने वाली मेज पर जाकर देखो, कुछ नहीं तो 10 दवाइयों की शीशियां वहां पर रखी होंगी, कुछ ताकत की गोलियां, कुछ हाजमे की और तरह तरह की। जग्गे को सब मालूम था कि कौन सी गोली मुझे किस वक्त चाहिए, अपने आप लाकर दे दिया करता था। हो गया तो दवाइयों का सिलसिला सारा खराब हो गया। तुम कुछ लो ना, तुम तो कुछ भी नहीं खा रही हो। उस दिन जो शाम को ये घर आए तो आते ही कहने लगे, कहाँ है जग्गा, उससे कहो 5 आदमी रात को खाना खाने आएंगे, बढ़िया तरकारियां बनाए और साग मीट बनाए। जग्गा आया तो गुम सुम इनके सामने आकर खड़ा हो गया, चेहरा ऐसा पीला जैसे मुर्दे का होता है। इन्होंने बड़े लाड़ से पूछा, क्यों जग्गे, क्या बात है, इतना चुप क्यों है, क्या गांव से कोई बुरी खबर आई है। पर जग्गा चुप, ना हूं ना हां। इन्हें कहता भी तो क्या, इनसे कैसे कहता कि आपका भाई मेरी घरवाली से मुंह काला कर रहा है, कोई गैरत भी तो होती है। इनके आगे तो वो आंख उठाकर भी नहीं देखता था। पर इनकी तबीयत को तो तुम जानती हो, बिगड़ जाएं तो सख्त बिगड़ते हैं, आगा पीछा नहीं देखते, और तो और मुझे भी नौकरों के सामने बेइज्जत कर देते हैं। जब जग्गा कुछ नहीं बोला तो इन्हें गुस्सा आ गया। जग्गा पत्थर की मूरत बना खड़ा था, जाने उसके मन में क्या था, बोल देता तो अपने दिल का गुबार तो निकाल लेता, मगर वो चुप। ये उसे डांटने लगे तो मैंने रोक दिया। मैंने कहा, जी मेहमान आने वाले हैं, अभी सारा काम पड़ा है, जा जग्गा तू रसोई घर में चल। उसी तरह गुमसुम रसोई घर में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं रसोई घर में गई कि खाने वाने का देखूं, तो वो वैसे का वैसा गुमसुम खड़ा था रसोई घर के बीचों बीच, पत्थर की मूरत बना हुआ। मैंने कहा, इसकी बुद्धि पथरा गई है, ये कोई काम नहीं कर पाएगा। मैं उन्हीं कदमों से लौट आई। मैंने इनसे कहा, जी इसे तो कुछ हो गया है, ये बोलता नहीं, मुझे तो डर लगता है, तुम बाहर से खाना मंगवा लो और इसे आज के दिन छुट्टी दे दो। मैंने इसे कहा तो ये खुद उठकर रसोई घर की तरफ चले गए और बजाय उसे छुट्टी देने के उसे फटकारने लगे। मैं थर थर कांपने लगी। क्या मालूम जग्गी ने कोई छुरा छिपा रखा हो, इन लोगों का क्या भरोसा। बदजात बोलता क्यों नहीं, ये ऐसे चिल्लाए जैसा मैंने इन्हें कभी चिल्लाते नहीं सुना। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे। मैं करूं तो क्या करूं। मैं भाग कर इनके पास गई। मैंने सोचा इन्हें खींचकर बाहर ले आऊंगी, पर इन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। कमीने, मैं बार बार पूछ रहा हूं बात क्या है और तू बोलता तक नहीं। तेरी जबान घिसती है मुझे जवाब देने में। निकल जाए यहां से, अभी चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। और जग्गे को कान से पकड़कर रसोई घर से बाहर ले आए। मैंने समझाने लगी, कुछ ना कहो जी, घंटे दो घंटे में मेहमान आने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बना। ये चला जाएगा तो खाना कौन बनाएगा। जा जग्गा, तू रसोई घर में जा। और मैं इन्हें जैसे तैसे खींच लाई। रात को जब मेहमान चले गए, हाँ जी बनाया जग्गे ने, सारा खाना बनाया, बड़ा अच्छा खाना बनाया, पर रहा गुमसुम, मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला। खाना खाते खाते इनका दिल भी पसीज गया। मेहमानों के सामने ही उससे कहने लगे, जग्गे जा तेरी 10 रुपए तरक्की, राय साहब कहते हैं साग मीट बहुत अच्छा बना है, शाबाश, जा तेरा कसूर माफ किया। ये देने पर आए तो मुंह मांगी मुराद पूरी करते हैं, इनका दिल तो समंदर है। रात को मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, जी बिक्की बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी की फिक्र करो। तो कहने लगे, तुम्हें इसकी शादी की क्या पड़ी है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो इसके मुंह पर से दूध भी नहीं सूखा। मैंने कहा, जी शादी नहीं करोगे तो खूंटा तुड़ाए सांड की तरह जगह जगह मुंह मारेगा, मैंने गोल मोल शब्दों में कहा। पर बिक्की से उन्हें बहुत प्यार है, इसे अपने बच्चे की तरह इन्होंने पाला है, उसकी बुराई ये नहीं सुन सकते। मैंने फिर से उसकी शादी की बात चलाई तो कहने लगे, मार ले जितना मुंह मारता है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 2 दिन हंस खेल ले, ब्याह के बंधन में तो एक दिन बंध ही जाएगा। मैंने कहा, जी जवान लड़का है, गलत रास्ते पर भी पड़ सकता है, इसका तो जितनी जल्दी ब्याह हो ब्याह कर दो। इस पर कहने लगे, अभी तो इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की, कुछ नहीं तो 30-40 हज़ार इसकी पढ़ाई पर खर्च कर चुका हूं, इसकी शादी करूं तो कम से कम ये रकम तो वसूल हो, और अभी इसने बीए पास भी नहीं किया। मर्द लोग समझदार होते हैं, इन्हें तो 10 बातों का ध्यान रहता है, अब मैं और आगे क्या कहती। मैंने इतना भर कहा, आप इसके कान खींचते रहा कीजिए, जवानी बड़ी मस्तानी होती है। इस पर ये बिगड़ उठे, तुझे कुछ मालूम है क्या, बोलती क्यों नहीं हो। ये इतनी रुखाई से बोले कि मैं चुप हो गई। मैंने सोचा, फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करूंगी, इन्हें आराम से समझाऊंगी। पर मुझे क्या मालूम था कि दूसरे ही दिन कुल खिलने वाला है। दूसरे दिन सुबह यही 8-8:30 का वक्त होगा, मैं पिछले बरामदे में बैठी बाल सुखा रही थी। वहां धूप अच्छी पड़ती है, मैंने सोचा बाल सूख जाए तो उन्हें काला करूं। जग्गे की घरवाली बड़े संवार कर मेरे बाल बनाती थी, मैंने सोचा बाल सूख जाए तो उसे बुला लूंगी। यही 8-8:30 का वक्त होगा। उसी वक्त फ्रंटियर मेल आती है। घर के पिछवाड़े थोड़ी दूर पर ही रेलवे लाइन है, अगर गाड़ियों को सिग्नल नहीं मिले तो यहीं पर रुक जाती हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। पर फ्रंटियर मेल यहाँ नहीं रुकती, वही एक गाड़ी है जो यहाँ खड़ी नहीं होती। जग्गे ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा होगा। उधर से गाड़ी आई तो जग्गा अपनी कोठरी में से निकला। मैंने कहा, जग्गे सुरस्ता को मेरे पास भेज दे, पर मुझे लगा जैसे उसने सुना ही नहीं। वो भाग कर पिछवाड़े की दीवार फान गया और रेलवे लाइन की ढलान चढ़ने लगा। ये सब पलक मारते हो गया, उसने मुड़कर पीछे देखा ही नहीं। मेरी भी अक्कल मारी गई, मुझे सूझा ही नहीं कि वो क्यों भागा जा रहा है। मैंने सोचा किसी काम से जा रहा होगा, गाड़ी का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, वरना मैं उसे रोक नहीं देती। ढलान चढ़ने के बाद मैंने देखा ही नहीं वो कहाँ गया, किस तरह गया है। झूठ क्यों बोलूं, शाम का वक्त है, बस फिर मुझे नजर ही नहीं आया। मुझे तो खटका तब भी नहीं हुआ जब गाड़ी धम धम करती आई और कुछ ही देर बाद पहिए घसीटती रुक गई। पहिए घसीटने की आवाज़ आती है ना, जैसे किसी ने चेन खींची हो, पर मैंने ख्याल ही नहीं किया। यहाँ रोज गाड़ियाँ रुकती हैं, मैंने सोचा किसी ने चेन खींची होगी। थोड़ी देर में माली भागा भागा आया, कहने लगा कोई हादसा हो गया है, और वो भी पिछवाड़े की दीवार फांद कर ढलान चढ़ने लगा। मुझे फिर भी शक नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पड़ोस वाले नौकर ने चिल्लाकर कहा, जग्गा मारा गया है, जग्गा गाड़ी के नीचे कुचल गया है। मेरा दिल बुरी तरह से धक धक करने लगा। वो तो जैसे घर का आदमी था, कोई पराया थोड़ी था, ये तो उसके साथ बेटे जैसा सलूक करते थे, वो भी इन्हें बाप की तरह मानता था। यही चीज उसे अंदर ही अंदर खा गई। मैं तो अब भी कहती हूं, अगर जग्गा पोल पड़ता तो बच जाता, ये जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते, ये सब तरकीबें जानते हैं, बड़े समझदार हैं। पर वो बोला ही नहीं। वो दिन तो ऐसा बुरा बीता, ऐसा बुरा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बार बार टेलीफोन आए, 3 बार तो पुलिस का इंस्पेक्टर आया, बार बार इन्हें बुलाता, बार बार कोठरी में झांक कर देखता। अंदर बैठी थी वो कुलच्छनी, मौका देखने के बहाने इंस्पेक्टर बार बार अंदर जाए। मर्द तो भेड़िए की तरह औरत को घूरते हैं ना, और वो अंदर बेहोश पड़ी थी, उसे बार बार गश आ रहे थे। अब मैं किस काम की, मुझसे तो अपनी जान नहीं संभाली जाती। तो एक बार मन में आया भी कि जाऊं सुरस्ता को देख आऊं, पर इन्होंने मना कर दिया। कहने लगे फौजदारी का मामला है, इससे दूर ही रहो, जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई ना कर ले कोठरी में कदम नहीं रखना। मर्द समझदार होते हैं ना, उन्होंने दुनिया देखी होती है। पुलिस ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा वो पिछले दिन से ही पगलाया पगलाया सा लग रहा था, मियां बीवी की आपस में कोई बात हुई हो तो हम नहीं जानते। नौकरों के अंदर की बातों से मालिकों का क्या काम। एक बार अंदर आए तो मैंने इनसे कहा जी तुम बिक्की को कहीं बाहर भेज दो। मैं कहूँ इन्हें मालूम नहीं, पर आसपास के किसी आदमी को मालूम हुआ तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पर इन्होंने समझदारी की, बिक्की को बाहर नहीं भेजा। मर्द लोग समझदार होते हैं, बिक्की लापता हो जाता तो पुलिस को शक पड़ सकता था ना। एक मठरी और लो, लो ना, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, खाओगी तो सेहत बनी रहेगी, बस मोटियाँ आना नहीं, मेरी तरह मोटी नहीं होना, मोटी देह किस काम की। तुम आ गई तो घंटा आध घंटा मन बहल गया, कभी कभी आ जाया करो ना, तुम दूर भी तो नहीं रहती हो, कहो तो मोटर भेज दिया करूं, अकेले में तो घर भाएं भाएं करता है, ये तो दफ्तर से आते हैं तो सीधे ब्रिज खेलने चले जाते हैं, जब तक 3-4 घंटे ब्रिज ना खेल लें इन्हें चैन नहीं मिलता। ये ताश तो मेरी सौतनाई है, इस घर में जब से ब्याही आई हूँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, रोज शाम को इन्हें उड़ा ले जाती है। हाय अब तो हंस भी नहीं सकती हूँ, हंसती हूँ तो सांस फूलने लगती है, छाती में शां शां होती है। मैं इनसे कहूँ तुम ताश बहुत ना खेला करो जी, अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल किया करो, जानती हो क्या कहते हैं। कहने लगे इसी ताश के तुफैल से ही मेरे 10 काम संवरते हैं, पुलिस का बड़ा अफसर ताश का साथी था, तभी जग्गे वाला मामला रफा दफा हो गया, वरना घर में से कोई खुदकुशी करे तो पुलिस वाले क्या घर वालों को परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मर्द लोग जाने, हम क्या जाने, बस वही दिन हमारा बुरा गुजरा। इनको दिन के वक्त सोने की आदत है, थोड़ा सो ना लें तो बदन भारी भारी महसूस होने लगता है, पर कोई सोने दे तो। उस दिन भी वही हुआ, सोने के लिए लेटे तो कभी टेलीफोन की घंटी बजने लगे तो कभी कोई सरकारी आदमी आ जाए, पर दूसरे दिन से चैन हो गया, फिर कोई नहीं आया। जब मामला रफा दफा हो गया तो एक दिन मैंने बिक्की की सारी करतूत इन्हें बता दी। ये कहने लगे मुझे तो पहले दिन से मालूम था। मैं हक्की बक्की इनके मुंह की ओर देखने लगी, जवानी में सभी बेवकूफियां करते हैं, इसने कर ली तो क्या हुआ। मैंने कहा, जी बिक्की को समझा तो दिया होता। कहने लगे, अरे कोई बेसवा के पास तो जा नहीं रहा था, कोई बीमारी तो ले नहीं आया था, हो गई जो बात होनी थी, आगे के लिए इसे खुद कान हो जाएंगे। मैंने कहा, जी पर बात तो अच्छी नहीं ना, ऐसा बिक्की को करना तो नहीं चाहिए था ना, बिक्की ने ऐसा नहीं किया होता तो जग्गा जान पर तो नहीं खेल जाता ना। तो कहने लगे, तुम क्या चाहती हो, भाई को पुलिस में दे देता? पर जी उसने जुर्म तो बहुत बड़ा किया है ना, ये और भी बिगड़ उठे, उसका जुर्म देखता या उसकी जान बचाता, तुम क्या चाहती हो, उसे काल कोठरी में भिजवा देता? फिर थोड़ी देर बाद धीमे से बोले, मुझे समझाने लगे, अव्वल तो कौन जाने बिक्की अपने आप अंदर गया था या जग्गे की घरवाली उसे इशारे करती रही थी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, औरत बढ़ावा देती है तभी मर्द बहकता है, लड़की इशारा भी कर दे तो आदमी बौरा जाता है, कोठरी के बाहर पर्दा लगा रहता है, क्या मालूम पर्दे की ओट में उसे इशारे करती रही हो। औरत खुद ना चाहती तो क्या मजाल थी कि बिक्की उसके कमरे में जाता, ऐसे ही कोई किसी के कमरे में घुस जाता है, इतनी ही शरीफ जादी थी तो अंदर से कमरा बंद करके क्यों नहीं बैठती थी, अंदर से साकल लगाकर बैठती। तेरा मर्द बाहर काम पर गया है, तू कोठरी में अकेली है, तू अंदर से कोठरी बंद करके बैठ, दरवाजा खोलकर बैठने का तेरा क्या मतलब है, दिन के वक्त तेरे पास आ सकती थी, उसे किसी ने मना किया था? मैं सुनती रही, मैं भी सोचूं, किसी के दिल की कौन जानता है, लड़की के दिल में चोर था या बिक्की के दिल में, भगवान जाने। आखिर में जी इन्होंने सारा मामला संभाल लिया, इनसे सब संतुष्ट हो गए, इन्हें भगवान ने ऐसी समझदारी दी है, इनकी कोई कसम तक नहीं खाता, सभी इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, ये जल्दी घबराना नहीं जानते ना, यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है, कोई दूसरा होता तो घबरा जाता। जग्गे का भाई गांव से आया, बहुत रोया धोया, उसे इन्होंने 200 रुपये निकाल कर दे दिए। जग्गे की घरवाली का बाप आया, उसे भी इन्होंने पैसे दे दिए। मैंने इनसे कहा, जी मामला रफा दफा हो गया है, अभी हमारे क्या लगते हैं, तुम पैसे लुटा रहे हो। पर नहीं, ये कहने लगे, जग्गे ने 10 साल तक हमारी सेवा की है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। कहने लगे, 100-150 दे दो तो गरीब का मुंह बंद हो जाता है, ये सबका भला सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, हर किसी की मदद ही करेंगे, ये जरा घंटी तो बजाना, मुए जानते भी हैं रात पड़ गई है, मगर मजाल है जो अपने आप आकर बत्ती जलाएं, बार बार घंटी बजानी पड़ती है, कानों में तेल डाले पड़े रहते हैं, अब आई हो तो खाना खा कर जाना, ये जाने कब लौटेंगे, कभी 10 बजे आते हैं, कभी खाना खा कर आते हैं, मैं दिन भर अकेली बैठी कौए उड़ाती रहती हूँ, अब खाना खाए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम आ गई, घड़ी भर दिल बहल गया, हमने अपनी बातें तो अभी तक की ही नहीं, दोनों बैठी बातें करेंगी, तुमने साग मीट का पूछा तो बीच में मुए जग्गे की बात चल पड़ी, मैं तुम्हें खाना खाए बिना तो जाने नहीं दूंगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ, तब तक अलविदा।